नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मोरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर QS विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को उत्साहजनक बताया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 12 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावकों के साथ एक ही PNR पर निर्धारित सीट सुनिश्चित करने को कहा। यूरोपीय संघ ने वीजा को लेकर नियम जारी किए। इससे भारतीय लंबी अवधि वाले बहुप्रवेश शेंगेन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और खेलों में तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता आज से चीन के शांघाई में शुरू हो रही है। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट शामिल है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सभी ने एक स्थिर और मजबूत सरकार के प्रदर्शन और उपलब्धियों को देखा है। आज राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के उनियारा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन वर्षों के दौरान देश ने ऐसे फैसले लिए जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की भी अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक ही PNR पर यात्रा कर रहे 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने माता पिता तथा अभिभावकों के पास की निर्धारित सीट पर ही यात्रा करने दे। DGCA के बयान के अनुसार ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने माता पिता तथा अभिभावकों के पास सीट नहीं मिली है। बयान में कहा गया है कि मौजूदा हवाई परिवहन परिपत्र को उपयुक्त रूप से संशोधित कर दिया गया है। यूरोपीय संघ ने वीजा को लेकर नए नियम जारी किए हैं जिसमें भारत में बार बार यात्रा करने वाले लोग लंबी अवधि के साथ बहुप्रवेश शेंजेन वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस फैसले से यूरोप के 29 देशों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। भारत और भूटान के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कल घोषित किए गए नियमों में भारत ने से नियमित यात्रियों के लिए कई व्यवस्था के साथ वीजा प्राप्त करना आसान हो जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के भीतर 2 बार वीजा प्राप्त करने और वैध रूप से उपयोग करने के बाद भारतीय नागरिकों को अब 2 साल के लिए दीर्घकालिक बहुप्रवेश शेंजेन वीजा जारी किया जा सकता है। यदि यात्री के पासपोर्ट की पर्याप्त वैधता शेष है तो 2 साल के वीजा के बाद 5 साल का वीजा दिया जाएगा। इससे नागरिकों को वीजा संबंधित प्रक्रिया से इतर बार बार यात्रा करने का अवसर मिलेगा। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हार्वे डेफलिन ने नए नियमों की सराहना करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ ने भारत के साथ लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, अमरोहा और मथुरा शामिल है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां, रोड शो और घर घर जाकर प्रचार में जुटे हैं। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में पहले जाने वाले नोएडा आज राज्य में कारोबार का केंद्र बन चुका है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज चुनाव प्रचार चरम पर है और मेरठ शहर प्रचार अभियान का मुख्य केंद्र है। राज्य की तीन बड़ी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेता आज मेरठ में होंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज मेरठ जिले के सिवालखास क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे अलीगढ़ जिले में भी प्रचार अभियान करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती आज दोपहर बाद मेरठ जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ भी एक रोड शो करेंगे। केरल में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता प्रचार कार्य में लगे हैं। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज केरल के कोच्चि पहुंचेंगे। वे कल एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में आलपुरा और इडुकी निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चेंगनूर और वायनाड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज शाम बेंगलुरु में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चित्रदुर्ग और बेंगलुरु दक्षिण संसदीय क्षेत्र में दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू भी मंच साझा करेंगे। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आज मंगलवार यानी कि 23 अप्रैल को हजारों श्रद्धालु पूजा करने के लिए अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के लिए लोगों ने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। इस अवसर पर कई भक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में प्रार्थना करने और भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र हुए। हनुमान जयंती प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भगवान हनुमान के जन्म पर मनाया जाता है। यह दिन हिंदू चंद्र माह चैत्र की पूर्णिमा के दिन पड़ता है जो आमतौर अप्रैल में होता है। हनुमान जी को अटूट भक्ति साहस और शक्ति के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर होंगी। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे आज ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगी और गंगा आरती में भी शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने आधार बैंकिंग में महीने में कम एक बार पैसों का लेनदेन अनिवार्य करने का दावों को खारिज किया है। दावों को फर्जी बताते हुए पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस बात से इनकार किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए अपडेट ने लोगों के लिए हर महीने आधार के माध्यम से पैसे का लेनदेन करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर ग्राहकों की आधार लेनदेन सुविधा लॉक नहीं होगी जैसा कि दावा किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो वे नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को रद्द कर देगा। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि एनडीए सरकार सभी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और सीएए को कभी भी रद्द नहीं किया जाएगा। श्री शाह ने यह भी कहा कि तीन आपराधिक कानून जिनका उद्देश्य समय पर न्याय प्रदान करना है निर्धारित तिथि पर लागू किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ई ऑफिस के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीलिंग ऑफिसर और उससे ऊपर या समकक्ष रैंक के सभी अधिकारियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।